एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। जब हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि हम उनको समझ सके और तेरा रास्ता में चल सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरा वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के द्वारा तेरा वचन को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है विवाह एवं परिवार भाग दो। इन दिनों हम लोग विवाह एवं परिवार के विषय में बातें कर रहे हैं। बीते दिन जो हम बातें किए उसका आखिरी में हम लोग यही समझ में आया कि पवित्र शास्त्र का इरादा है कि विश्वासियों को केवल अन्य विश्वासियों के साथ ही विवाह करना चाहिए। आज हम आगे इसमें और देखेंगे। दूसरा बात है एक साथ खड़ा होना। एक तन होने के लिए दो व्यक्तियों को पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जब कोई विवाह करता है तो वह प्रत्येक बात का जोखिम उठाता है और प्रत्येक उस बात को स्वीकार करता है जो उसके साथी के साथ आती है। जो लोग विवाह करते हैं वे अपने साथी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को साझा करने व हर कठिनाइयों के विरुद्ध उसके साथ खड़े रहने की अपनी इच्छा की घोषणा करते हैं। विवाह के लिए एक सक्रिय प्रेम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है जो हार नहीं मानेगा। दो व्यक्ति वह सब कुछ आपस में बांटते हैं जो उनके पास है, ना केवल उनके शरीर, ना केवल उनकी भौतिक संपत्ति, बल्कि उनकी भावनाएं, उनके आनंद व उनका कष्ट, उनकी आशाएं व उनके भय, उनकी सफलताएं व उनकी असफलताएं भी। एक तन होने का अर्थ है कि दो व्यक्ति पूर्णता से शरीर, आत्मा व मन के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं और फिर भी वे दो भिन्न व्यक्ति रहते हैं। तीसरा बात इसमें है घनिष्ठता। एक तन बनने में यौन संबंध शामिल हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब वह गर्भवती हुई, कहता है उत्पत्ति 4:1। एक साथ जुड़ने की उनकी काम वासना में एक ऐसी काम वासना जिसे पुरुष एवं स्त्रियों ने आदम और हवा के समय से महसूस किया है। प्रत्येक जोड़ा प्रथम प्रेम कहानी को फिर से दोहराता है। यौन अंतरंगता का कार्य उनके लिए संभव शारीरिक मिलन की निकटतम चीज है। यह उस निकटता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे जोड़ा भावनात्मक के साथ साथ आत्मिक रूप से भी जान सकते हैं। मसीह वैवाहिक प्रेम में जोश, आनंद व प्रसन्नता की विशेषता होनी चाहिए। देखिए नीति वचन 5:18-19। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछावना निष्कलंक रहे, कहता है इब्रानियों 13:4। शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि पति व पत्नी के बीच प्रेम की आनंदमयी यौन अभिव्यक्ति परमेश्वर की योजना है। या जैसा कि इब्रानियों का लेखक बल देकर कहता है, यह बेदाग है, पापमय नहीं है, कलंकित भी नहीं है। विवाह में यह एक बड़े सम्मान का स्थान है, पवित्रों का पवित्र, जहां पति व पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का निजी रूप से उत्सव मनाने के लिए मिलते हैं। यह एक ऐसा समय है जो दोनों पवित्र व अति आनंददायक है। अब हम लोग पांचवा बात में यहाँ जाएंगे जो कहता है बाइबल का प्रेम। दाम्पत्य प्रेम एक दूसरे के प्रति बिना शर्त स्नेही एवं अंतरंग भक्ति है जो परमेश्वर के स्वरूप में व्यक्ति के संपूर्ण पहलुओं में शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं आत्मिक रूप में पारस्परिक विकास को प्रोत्साहित करती है। विवाह में विभिन्न प्रकार के प्रेम कार्य करते हैं। इसमें एक रोमानी कामुक समय है, इसमें आरामदायक समय है, इसमें मिलनसार व किसी के होने का अनुभव करने का समय है। लेकिन यह नए नियम में वर्णित अगापे आध्यात्मिक प्रेम है, निस्वार्थ सब के लिए प्रेम, जिसमें सच्चे स्थायी वैवाहिक प्रेम की नींव शामिल है। यीशु ने इस प्रकार के प्रेम के उच्चतम रूप का प्रदर्शन तब किया जब हमारे पापों के दोष एवं परिणाम को स्वीकार करते हुए वह क्रूस पर चढ़ गया, अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13:1 में इस प्रेम का वर्णन करते हुए पौलुस कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज करता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियों हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 1 कुरिन्थियों 13:4-8। इस अनुच्छेद पर टिप्पणी करते हुए एड वाइट ने लिखा, अगापे प्रेम अनंत शक्ति स्रोत में जोड़ा गया है, यह निरंतर रूप से तब भी चलता रह सकता है जब अन्य सभी प्रकार के प्रेम विफल हो जाएं। यह प्रेम करता है चाहे कुछ भी हो, दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी अप्रिय क्यों ना हो, अगापे बहता रह सकता है। अगापे उतना ही बेशर्त है जितना कि हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम। यह एक मानसिक रवैया है जो इच्छा के सुविचारित चुनाव पर आधारित है। 6 बात हम देखते हैं, व्यक्तिगत आत्मिक जिम्मेदारी। यद्यपि वैवाहिक सहयोगियों ने एक दूसरे के प्रति एक वाचा बांधी है, फिर भी उन्हें प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से किए गए चुनावों के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 2 कुरिन्थियों 5:10 देखिए, इस प्रकार की जिम्मेदारी लेने का अर्थ है कि वे स्वयं द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए कभी भी दूसरे को दोष नहीं देंगे। उन्हें अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। कोई भी दूसरे की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर नहीं कर सकता, फिर भी दूसरी ओर प्रत्येक का परमेश्वर के साथ संबंध दूसरे के लिए प्रेरणा एवं शक्ति का स्रोत बन सकता है। आइए अब हम देखेंगे विवाह पर पतन का क्या प्रभाव हुआ। मानवता द्वारा प्रतिबिंबित परमेश्वर के स्वरूप की कुरूपता जिसे पाप लाया का प्रभाव विवाह पर भी पड़ा, जैसा कि निश्चित रूप से मानव अनुभव के किसी अन्य क्षेत्र पर पड़ा था। जहां उत्तम प्रेम एवं एकता का राज्य था, वहां स्वार्थ की घुसबैठ हुई। स्वार्थ उन सभी का प्राथमिक प्रेरक है जो मसीह के प्रेम से विवश नहीं है। समर्पण, सेवकाय और देने के सभी सिद्धांतों के विपरीत जाना, जिनका सुसमाचार प्रतिनिधित्व करता है, सभी मसीही विफलताओं का सामान्य विभाजक है। अपनी अवज्ञा द्वारा आदम और हवा ने अपनी सृष्टि के उद्देश्य का उल्लंघन किया। पाप करने से पहले वे परमेश्वर के सामने पूर्ण खुलेपन में रहते थे, उसके पश्चात खुशी खुशी उसके पास आने के बजाय वे डर कर छिप गए। तब से यह जिम्मेदारी से भागना व स्वयं को न्यायोचित ठहराते हुए इनकार करना परमेश्वर के साथ मानव संबंधों का सामान्य तरीका रहा है। पाप के पश्चात परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 3:16। उसने इस सिद्धांत को नियत किया जिसने स्त्री पुरुष की बुनियादी समानता को नहीं बदला, ताकि दोनों प्रथम जोड़ी व उसके पश्चात के वैवाहिक जोड़ों को लाभ हो। दुर्भाग्य से यह सिद्धांत विकृत हो गया। उस समय से सदियों की अवधि में शक्ति द्वारा प्रभुत्व, छल योजना एवं व्यक्तित्व का विनाश विवाह की विशेषता है। आत्मकेंद्रियता ने एक दूसरे की स्वीकृति और प्रशंसा को कम कर दिया है। मसीह धर्म का सार स्व इनकार के सद्भाव में जीवन व्यतीत करना है, जो पतन के पूर्व विवाह की विशेषता थी, जिसने इस सद्भाव को नष्ट कर दिया। पति पत्नी के बीच स्नेह को एक दूसरे की प्रसन्नता में सहयोग देना है, प्रत्येक को दूसरे के आनंद को बढ़ाना है, उन्हें एक बनना है, फिर भी उनमें से किसी को भी अपने व्यक्तित्व को नहीं खोना है जो परमेश्वर का है। परमेश्वर के आदर्श से हट जाना। पहला आता है बहुविवाह। किसी साथी व अनेक जीवन साथियों को बनाए रखने की प्रथा उस एकता और मिलन के बिल्कुल विपरीत है, जिसे परमेश्वर ने अदन में हुए प्रथम विवाह के साथ स्थापित किया था। बहु विवाह में अन्य सभी को त्यागना नहीं होता है। यद्यपि पवित्र शास्त्र कुलपतियों के समय में बहु विवाहों को एक सांस्कृतिक वास्तविकता के रूप में वर्णित करता है, इनका विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन विवाहों ने दिव्य आदर्श को प्राप्त नहीं किया था। उन विवाहों के भीतर परिवार के अन्य सदस्यों को घायल करने के लिए बच्चों को भावनात्मक हथियारों के रूप में उपयोग करते हुए विभिन्न उपखंड, सत्ता संघर्ष, कठोर द्वेष एवं अलगाव में शामिल हो गए। आप देख सकते हैं उत्पत्ति 16 और उत्पत्ति 29 का 16 से 30 का 24 तक। एक से एक का विवाह जोड़ों को अपनेपन की भावना प्रदान करता है, जो उनकी अंतरंगता और बंधन को मजबूत करता है। अनेक अनैतिक यौन संबंध एवं व्यभिचार, यह दूसरा है। वर्तमान विचार एवं अभ्यास स्थायी वचनबद्धता को महत्वपूर्ण नहीं मानते, जिसमें दोनों पति पत्नी मृत्यु होने तक एक दूसरे के प्रति यौन रूप से वफादार होते हैं। परंतु शास्त्र विवाह के बाहर किसी भी प्रकार के यौन संबंधों को पाप मानता है। सातवीं आज्ञा प्रभावकारी व अपरिवर्तित है, तो व्यभिचार ना करना, निर्गमन 20:14 में मिलता है। यहाँ किसी योग्यता या अयोग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। यह आज्ञा एक सिद्धांत है जो वैवाहिक संबंधों की सर्गी से रक्षा करता है। अनैतिक यौन संबंध एवं व्यभिचार के बारे में बाइबल के दृष्टिकोण का पूर्ण महत्व सहमत वयस्कों द्वारा ऐसी गतिविधियों की आज की सहनशीलता के प्रति स्पष्ट रूप से विपरीत है। दोनों नए व पुराने नियम में अनेक अनुच्छेद ऐसी प्रथाओं की निंदा करते हैं, जैसे कि लेविवस्था 20:10-12, नीतिवचन 6:24-32, 7:6-27 इत्यादि। और यदि बच्चे शामिल होते हैं तो वे उन्हें विशेष रूप से घायल करते हैं। इन अवैध संबंधों के परिणाम स्वरूप यौन रोगों का संचार व अवैध संतानों का जन्म होता है। आगे हम देखेंगे विचारों की अशुद्धता। पाप केवल बाहरी क्रिया ही नहीं है, बल्कि यह तो हृदय की बात है जो विचार पद्धति में गहराई तक पहुंचता है। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, कहता है मत्ती 5:27-28 में। मसीहों को शुद्ध विचार सोचने और शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वे अनंत काल तक एक शुद्ध समाज में जीवन व्यतीत करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे है कौटुंबिक व्यभिचार। यह क्या है? यह कैसे लोग करते थे? कुछ माता पिता उस सीमा को पार कर जाते हैं जो उनके बच्चों के प्रति स्नेह की स्वस्थ अभिव्यक्ति का सीमांकन करती है। उनके साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से अंतरंग हो जाते हैं। अक्सर यह तब होता है जब सामान्य पति पत्नी के बीच संबंधों की उपेक्षा की जाती है और किसी एक बच्चे का जीवन साथी की भूमिका निभाने के लिए चुनाव किया जाता है। सीमाओं का यह धुंधलापन सगे भाई बहनों के बीच व विस्तृत पारिवारिक सदस्यों के बीच भी हो सकता है। पुराने नियम में कौटुंबिक व्यभिचार वर्जित किया गया था। देखिए लवव्यवस्था 18 का 6 से 29, व्यवस्था विवरण 27 का 20 से 23 एवं नए नियम में इनकी निंदा की गई है। पहला कुरिन्थियों 5 का 1 से 5 देखिए। आगे है तलाक, एक बयान जो यीशु ने दिया तलाक पर बाइबल की शिक्षा के सार को प्रस्तुत करता है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, पढ़ते हैं मत्ती 19 का 6 में। यीशु का कथन मौलिक धर्मशास्त्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करता है जो तलाक की एक मसीह समझ को रेखांकित करता है। परमेश्वर ने विवाह को अटूट होने के लिए नियत किया था। यीशु ने फरीसियों को कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। मत्ती 19 का 8। उसने आगे कहा कि यौन विश्वासघात ही तलाक का एकमात्र वैध कारण है। मत्ती 5 का 32 और मत्ती 19 का 9 देखिए। यहां तक कि किसी के साथी द्वारा की गई बेवफाई का यह अर्थ नहीं है कि विवाह का अंत तलाक में समाप्त हो जाना चाहिए। क्रूस की राह कड़वाहट की जड़ों को दूर करके गहरे पश्चाताप व क्षमा को प्रोत्साहित करती है। और एक बात जो है वह है समलैंगिकता। परमेश्वर ने नर व नारी को भिन्न होने के लिए और फिर भी एक दूसरे के पूरक होने के लिए सृजा है। पवित्र शास्त्र समलैंगिक प्रथाओं की कड़ी नकारात्मक शब्दों में निंदा करता है। देखिए उत्पत्ति 19 का 4 से 10 और इसे तुलना करें यहूदा 7 और 8 से, लेव्यवस्था 18 का 22, 20 का 13 इत्यादि। क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3 का 23। मसीह उन लोगों के साथ मुक्ति प्रदत्त तरीके से व्यवहार करेंगे जो इस विकार से पीड़ित हैं। वे उन दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करेंगे जो मसीह ने व्यभिचार में दोषी उस स्त्री के प्रति लिया था। यीशु ने कहा था, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना, यूहन्ना 8 का 11। न केवल समलैंगिक प्रवृत्ति वाले लोग बल्कि वे सभी व्यक्ति जो ऐसे व्यवहारों या संबंधों में लिप्त हैं जो उत्सुकता, लज्जा एवं अपराध बोध का कारण बनते हैं, उन्हें प्रशिक्षित व अनुभवी मसीह सलाहकार की सहानुभूतिपूर्ण समझ की आवश्यकता है। कोई भी व्यवहार परमेश्वर के उपचारात्मक अनुग्रह की पहुंच से बाहर नहीं है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक अच्छा आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए बनाया, अच्छा पति पत्नी का संबंध बनाए रखने के लिए बनाया, लेकिन दुनिया में पाप के बाद बहुत सारे गड़बड़ी आई और बहुत सारे गलत व्यवहार होने लगे हैं। परंतु परमेश्वर आज हमें बुलाता है कि हम लोग सही आदर्श को चुने, परमेश्वर का हम महिमा करें और उसके रास्ता में चले, उसके बड़ाई के लिए हम जिए। इस बुलाहट के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। आइए हम उसके बाद माने और उसके रास्ता में चले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता हमें बुलाने के लिए और इस वचन देने के लिए। तू हमें तेरा सच्चाई का रास्ता में चलने के लिए तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य पिता, और हम सबों को तेरे राज के लिए बचा। इस विनती को प्रभु यीशु के मधुर नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।